आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मतलब हर एक छोटी डिटेल को ट्रैक करना कितना आसान हो गया है ना।
हाँ बिल्कुल, हमारे स्मार्ट वॉचेस सब कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं।
वही तो, हम दिन भर में कितने कदम चले, कितनी कैलोरीज खाई, यहाँ तक कि कितने घंटे गहरी नींद आई। और हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास हर चीज का बिल्कुल परफेक्ट डेटा होगा तो हमारी जिंदगी भी परफेक्ट हो जाएगी,
पर सच्चाई तो कुछ और ही होती है।
एग्जैक्टली, हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, पर उस पर लगातार अमल करना मतलब वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है।
सही बात है, ये बिल्कुल एक एक्सरे मशीन की तरह है।
एक्सरे मशीन?
हाँ, जैसे एक एक्सरे मशीन बिल्कुल साफ दिखा देती है कि हड्डी कहाँ से टूटी है, पर वो उस हड्डी को जोड़ नहीं सकती। डेटा और नियम हमें बता जरूर देते हैं कि दिक्कत कहाँ है, पर वो उस दिक्कत को ठीक नहीं कर सकते।
अरे वाह, क्या एनालॉजी दी आपने। और आज हम इसी मुद्दे की पूरी तह तक जाएंगे। हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर का एक बेहद दिलचस्प लेक्चर है जो रोमन्स के 7वें और 8वें अध्याय का पूरा विश्लेषण करता है। तो चलिए पहले इस पूरी बात को खोल कर देखते हैं।
बिल्कुल,
मुझे सबसे ज्यादा उत्साह इस बात का है कि हजारों साल पुराना ये टेक्स्ट आज की ह्यूमन साइकोलॉजी को कितनी गहराई से समझता है, खासकर हमारी हर चीज को माइक्रो मैनेज करने की आदत को।
ये वाकई एक ऐसी उलझन है जो इंसान को सदियों से परेशान करती आई है। अगर हम डॉक्टर कीनर के इस लेक्चर की विशालता को समझें तो रोमन्स का 7वां अध्याय एक थोड़ा उलझा हुआ हिस्सा माना जाता है।
हाँ, लोग इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं।
सही कहा, लेकिन ये 6वें और 8वें अध्याय के बीच एक बेहद जरूरी ब्रिज का काम करता है। ये स्पष्ट करता है कि आखिर नियम, या जिसे हम कानून या द लॉ कहते हैं, उसकी सच में सीमा क्या है।
राइट, क्योंकि आजकल लोग लगातार खुद पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स और नए नए डिसिप्लिन के नियम थोपते जाते हैं।
पर लेक्चर हमें दिखाता है कि लगातार खुद को माइक्रो मैनेज करने से आजादी नहीं मिलती। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी अंदर से आने वाला बदलाव, वो गायब है।
तो इस साइकोलॉजी और इस आंतरिक युद्ध को समझने के लिए मुझे लगता है पहले उस मैदान को समझना होगा जहाँ ये सब लड़ा जा रहा है, यानी हमारा शरीर।
बिल्कुल, हमारा फिजिकल अस्तित्व।
डॉक्टर कीनर इस लेक्चर में दो अलग ग्रीक शब्दों का जिक्र करते हैं, फ्लैश और बॉडी। पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि इन दोनों का मतलब एक ही है, जैसे मांस और शरीर, पर क्या इनका मतलब सच में एक है?
नहीं नहीं, इन दोनों शब्दों का अंतर समझना ही इस पूरी फिलोसफी की नींव है। ग्रीक भाषा में इनके लिए सार्क्स यानी फ्लैश और सोमा यानी बॉडी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।
अच्छा, सार्क्स और सोमा।
हाँ, पॉल जो इस टेक्स्ट के लेखक हैं, इन दोनों को कुछ हद तक आपस में जोड़ते जरूर हैं। जैसे जेनेसिस की उस पुरानी लाइन का हवाला दिया गया है जहां लिखा है दे बिकम वन फ्लैश,
यानी वो एक मांस बन जाते हैं।
एग्जैक्टली, लेकिन इनका ठीक ठीक आशय अलग है। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी या सोमा अपने आप में बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। उस जमाने में एक आम सोच थी कि भौतिक दुनिया पूरी तरह से बुरी है।
ओ, आप उन ग्नोस्टिक और प्लेटोनिक दर्शन की बात कर रहे हैं ना। उनका तो ये मानना था कि शरीर एक मकबरा या टूम्ब की तरह है।
हाँ वही,
जैसे आत्मा इस फिजिकल शरीर में कैद हो गई हो और मौत के बाद ही उस आत्मा को आजादी मिलेगी।
बिल्कुल, उन ग्नोस्टिक विचारकों के हिसाब से शरीर बुराई का प्रतीक था, एक मीट सूट जिसे किसी तरह छुटकारा पाना था। लेकिन पॉल और डॉक्टर कीनर यहाँ इस बात को पूरी तरह से पलट देते हैं।
कैसे?
उनके अनुसार शरीर का नाश या सेल्फ एनाइलेशन कोई लक्ष्य नहीं है। शरीर भगवान का बनाया हुआ है और अपनी जगह ठीक है। जो हमारी भूख है या जो प्रोक्रिएशन का जज्बा है, वो सब जरूरी पैशंस हैं।
सही बात है, अगर भूख ना लगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा?
और अगर प्रोक्रिएशन की इच्छा ना हो तो इंसान की पूरी प्रजाति कब की खत्म हो चुकी होती?
वेट, तो अगर बॉडी ठीक है तो फ्लैश को इतना नेगेटिव क्यों माना गया है? मुझे इससे ख्याल आ रहा है, क्या ये गाड़ी की तरह है?
गाड़ी? कैसी गाड़ी?
जैसे कार की जो बाहरी बॉडी होती है वो अपने आप में बुरी नहीं है, वो हमें धूप से बचाती है, सफर तय करवाती है।
हाँ।
लेकिन अगर अंदर बैठा ड्राइवर, जो यहाँ हमारे पैशंस है, वो अचानक अपना कंट्रोल खो दे और अंधाधुंध गाड़ी भगाने लगे, तो एक्सीडेंट तो तय है ना। तो समस्या गाड़ी की नहीं, उस ड्राइवर के कंट्रोल खोने की है।
अरे वाह, क्या बात है। और उस गाड़ी के उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो फ्लैश का आलोचनात्मक मतलब सिर्फ एक लापरवाह ड्राइवर नहीं है। यहाँ फ्लैश का मतलब है हमारा क्रीचरलीनेस।
क्रीचरलीनेस मतलब हमारा फाइनाइट होना।
बिल्कुल, हमारा सीमित होना और पाप के प्रति हमारा कमजोर होना। समस्या ये है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, सड़क आगे जाकर टूट रही है, लेकिन ड्राइवर फिर भी जिद कर रहा है गाड़ी चलाने की।
ओ, अब समझ आई बात।
इसीलिए पॉल का मकसद उस गाड़ी को तोड़ना या कबाड़े में फेंकना नहीं है, उनका मकसद इस फाइनाइट शरीर को एक इन्फिनिट या अनंत उद्देश्य के साथ प्लग इन करना है। जब हम उस बड़ी ताकत या स्पिरिट के हवाले अपनी गाड़ी कर देते हैं, तब बॉडी का सही इस्तेमाल होता है।
ओके, तो अगर शरीर सिर्फ एक गाड़ी है जिसे एक अनंत ताकत से जोड़ना है, तो हमें उन पुराने कानूनों और नियमों से आजादी क्यों चाहिए?
आप कानून यानी द लॉ की बात कर रही हैं?
हाँ, आखिर वो कानून ही तो ट्रैफिक रूल्स है जो गाड़ी को सही रास्ता दिखाते थे, उन्हें छोड़ने की बात क्यों आती है? डॉक्टर कीनर ने इसको समझाने के लिए एक विधवा या विडो का बड़ा ही अनोखा उदाहरण दिया है ना?
हाँ, ये विधवा वाला उदाहरण उस जमाने के कानूनी ढांचों को बहुत खूबसूरती से समझाता है। पॉल कहते हैं कि लोग पहले तोरा या कानून के साथ ब्याहे हुए थे।
अच्छा, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह।
एग्जैक्टली, उस दौर में मैरिज एक बेहद मजबूत लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन अगर किसी के पति की मौत हो जाती है तो क्या होता है?
वो उस कॉन्ट्रैक्ट से लीगली आजाद हो जाती है।
बिल्कुल, मौत उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट का अंत कर देती है और तब वो एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आजाद होती है। ठीक वही स्थिति यहाँ लोगों पर लागू होती है।
यानी नए जीवन में किसी नए आत्मिक अस्तित्व से जुड़ने के लिए उन पुराने कानूनों के प्रति मरना जरूरी था।
सही पकड़े, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क समझाया गया है। ओल्डनेस ऑफ द लेटर यानी शब्दों का पुराना तरीका, और न्यूनेस ऑफ द स्पिरिट यानी आत्मिक नयापन।
ये ओल्डनेस ऑफ द लेटर वाला हिस्सा मुझे सच में बहुत फैसिनेटिंग लगा। लेक्चर में बताया गया है कि उस दौर के रैबाई कई बार किताबों की इतनी छोटी छोटी डिटेल्स में उलझ जाते थे।
जैसे वो जेनेसिस वाली बात?
हाँ, जैसे जेनेसिस 2.7 में किसी शब्द की स्पेलिंग में डबल योड क्यों आया। वो एक लेटर की स्पेलिंग में इतना घुस गए कि जो मूल संदेश था वही खो गया। डॉक्टर कीनर ने इसे समझाने के लिए आई सॉ द कैट रन वाला एक बड़ा शानदार उदाहरण दिया है।
वो उदाहरण बहुत ही आसान भाषा में इस टेंडेंसी को समझाता है। मान लीजिए एक वाक्य है आई सॉ द कैट। अब अगर कोई इसके ग्रामर का पूरा पोस्टमार्टम करने बैठ जाए, वो कहे देखिए आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सॉ एक ऑक्यूलर सेंसेशन वर्ब है,
और कैट एक फेलाइन प्रजाति का जानवर है।
बिल्कुल, जब तक वो इंसान इन बारीकियों को सुलझाएगा वो उस बिल्ली और उसके भागने की पूरी जिंदा कहानी ही भूल जाएगा। इसे कहते हैं मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज,
यानी ग्रामर के चक्कर में कहानी गायब हो गई।
सही कहा। पुराना नियम या ओल्ड कवेनेंट अपने आप में बुरा नहीं था, लेकिन नया रास्ता उससे ग्रेटर या बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ उन बाहरी शब्दों पर नहीं टिका है।
लेकिन एक मिनट, मेरा यहाँ एक पुशबैक है।
हाँ, बोलिए।
अगर सड़क से सारी ट्रैफिक लाइट्स हटा दी जाएं और कहा जाए कि अपनी अंदरूनी अच्छाई से गाड़ी चलाओ, तो लोग तो एक दूसरे पर गाड़ियाँ चढ़ा देंगे ना?
अगर हर कोई नियमों से आजाद हो जाए तो क्या हंगामा नहीं मच जाएगा?
ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, और यही वजह है कि रोमन 7.12 स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि कानून अच्छा है, ठीक है और पवित्र है। कानून बिल्कुल भी बुरा नहीं है।
तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि कानून सिर्फ हमें बाहर से माइक्रो मैनेज करता है। वो ट्रैफिक लाइट आपको लाल रंग दिखाकर गाड़ी रोकने को कह सकती है, पर वो आपके अंदर के गुस्से या जल्दबाजी को शांत नहीं कर सकती जो आपको सिग्नल तोड़ने पर मजबूर कर रही है।
ओह वाओ, ये तो बहुत डीप बात है।
हाँ, यहाँ जेरेमाया और इजीकियल के टेक्स्ट के बारे में भी बात की गई है। असली बदलाव तब आता है जब नियम पत्थर की शिला पर नहीं सीधे दिल पर लिखे जाते हैं।
राइट, और जब नियम दिल पर नहीं लिखे होते तभी तो वो सबसे बड़ा आंतरिक युद्ध शुरू होता है। रोमन 7 में जो एक मैं या आई का जिक्र है जो लगातार फेल हो रहा है, इस मैं के पीछे का क्या लॉजिक है?
इस मैं को लेकर स्कॉलर्स में काफी लंबा विवाद रहा है। कुछ सोचते थे कि ये पॉल अपने खुद के स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन डगलस मू जैसे विद्वानों के हवाले से डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि हाँ, मूल रूप से इसराइल की बात हो रही है।
अच्छा, इसराइल जो कानून के ठीक नीचे रहकर खुद को बेबस महसूस कर रहा था।
हाँ, और इस साहित्यिक टेक्निक को प्रोजोपोपिया कहते हैं, यानी किसी और के कैरेक्टर में ढलकर बोलना ताकि लोग उस दुख को गहराई से महसूस कर सकें।
वो बेबसी कितनी यूनिवर्सल है ये उन ग्रीक ट्रेजेडीज के जिक्र से समझ आता है, जैसे मेडिया और फीड्रा की कहानियां।
बिल्कुल,
उन कहानियों में किरदारों को पता होता है कि वो जो कर रही हैं वो गलत है, पर अपने पैशंस के आगे उनका कोई जोर नहीं चलता। पॉल के अनुसार कानून मानने वाला भी ऐसी ही बेबसी महसूस करता है जब तक वो सिर्फ नियम पर निर्भर है।
और उस समय के स्टोइक फिलोसोफर्स को लगता था कि उनके पास इसका इलाज है। उनका मानना था कि लॉजिक और रीजन से इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।
पर वो लॉजिक हमेशा काम नहीं आता ना?
बिल्कुल नहीं। लेक्चर में एक समुद्री तूफान में फंसे स्टोइक फिलोसोफर का बड़ा अच्छा हवाला दिया गया। जब तक समुद्र शांत था वो अपनी लॉजिक की बातें कर रहा था, पर जैसे ही तूफान आया और जहाज डोलने लगा
वो डर के मारे सफेद पड़ गया होगा।
एकदम, एक ही पल में उसका लॉजिक उसके डर के आगे ढेर हो गया।
ये वही पॉइंट है जहां कानून सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता बल्कि हमारी बीमारी को और बड़ा कर देता है। इसको समझाने के लिए वो पिंक एलिफेंट वाला लॉजिक बड़ा कमाल का है।
हाँ, वो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है।
अगर किसी से कहा जाए कि गुलाबी हाथी या पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो तो दिमाग सबसे पहले वही तस्वीर बनाएगा।
ये बिल्कुल किसी सख्त डाइट प्लान जैसा है।
सही कहा आपने।
जैसे ही मैं सोचती हूँ कि आज से मीठा नहीं खाना, अचानक मुझे आसपास सिर्फ केक और चॉकलेट ही दिखने लगते हैं।
कानून हमें इन्फॉर्म करता है पर हमारी लालच को और तेजी से जगा देता है।
यही कानून की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। कानून हमें बताता है कि लालच गलत है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, पर उस लालच को जड़ से उखाड़ने की ताकत उस कानून में नहीं है। कानून सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल है,
यानी वो रिपोर्ट देता है पर दवा नहीं दे सकता।
एग्जैक्टली। इसीलिए नियम के आधार पर लड़ा गया युद्ध हमेशा उसी बेबसी पर खत्म होता है।
तो अगर स्ट्रिक्ट नियम, डाइट प्लान्स और स्टोइक लॉजिक फेल हो जाते हैं तो आखिर इंसान जीत कैसे हासिल करें? डॉक्टर कीनर इसके जवाब के लिए रोमन्स के 8वें अध्याय को खोलते हैं ना, माइंड ऑफ द फ्लैश वर्सेज माइंड ऑफ द स्पिरिट, इनमें क्या अंतर है?
रोमन्स 8 सच में इस चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। फ्लैशली माइंड यानी शारीरिक सोच का आखिरी में नतीजा सिर्फ मौत है। ये उन लोगों की सोच है जो सिर्फ आज की जरूरतों के गुलाम हैं।
फिलिपियंस 3 का जो हवाला था,
हाँ,
कि इनका भगवान उनका अपना पेट या बेली है।
हाँ, इनका ध्यान सिर्फ तुरंत सुकून पाने पर होता है, और क्योंकि ये शरीर फाइनाइट है इस सोच का अंत भी एक दिन होना ही है। इसके विपरीत माइंड ऑफ द स्पिरिट का अर्थ है लाइफ और पीस। और बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह किसी हजारों नियमों की लिस्ट को मानने का नतीजा नहीं है।
तो ये क्या है?
ये एक नए अस्तित्व को अपनाना है, एक नई आइडेंटिटी।
और इस नई आइडेंटिटी को समझाने के लिए डॉक्टर कीनर अपना और अपने साथी का एक बड़ा मजेदार उदाहरण देते हैं, है ना? वो बताते हैं कि उन्हें ADD है और उनके साथी को OCD नहीं बल्कि CDO है।
CDO यानी लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
हाँ, ये सुनने में एक जोक लगता है पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात छिपी है।
बिल्कुल, वो CDO वाला मजाक दरअसल हमारी उस फितरत को दिखाता है जहां हम हर छोटी डिटेल को माइक्रो मैनेज करने की जिद करते हैं। यही वही ओल्डनेस ऑफ द लेटर है। स्पिरिट का रास्ता हर छोटी डिटेल को खुद माइक्रो मैनेज करना नहीं है।
पर उस दौर के लीडर्स जैसे सेड्यूसीज, क्या वो ये मानते थे कि स्पिरिट सच में ऐसे काम करती है?
नहीं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई दैविक स्पिरिट आज के समय में आम लोगों में एक्टिव हो सकती है। उनके लिए धर्म सिर्फ किताबों और स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट को फॉलो करना था। लेकिन पॉल ने दावा किया कि स्पिरिट हर बिलीवर के अंदर काम कर रहा है और उन्हें अंदर से एक नया आकार दे रहा है।
लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर सोचें तो कोई आम इंसान कैसे तय करे कि उसका माइंड फ्लैश पर है या स्पिरिट पर? क्या ये सिर्फ सुबह उठकर पॉजिटिव सोचने जैसा है?
अगर कोई सिर्फ खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा तो वो घूम फिर कर वापस उसी पिंक एलिफेंट और डाइट प्लान वाले लूप में फंस जाएगा।
तो फिर क्या करना है?
यहाँ मुद्दा अपनी कोशिश से धार्मिकता कमाना नहीं है बल्कि उसे रिसीव करना है। जो आइडेंटिटी आपको दी गई है उसे जीना शुरू करना है। जब फोकस इस बात पर नहीं होता कि मुझे ठीक क्या करना है बल्कि इस पर होता है कि मैं अब किसी बड़ी ताकत का हिस्सा हूँ, तभी वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती है।
वाओ, ये बात तो सच में बहुत डीप है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के मूल बिंदुओं को एक जगह समेट लेते हैं। हमने देखा कि हमारा शरीर बुरा नहीं है और कानून भी बुरा नहीं है।
सही।
लेकिन सिर्फ नियम पढ़ने से या बारीकियों में उलझने से, जैसे उस बिल्ली वाले सेंटेंस की ग्रामर ढूंढने से, कभी आंतरिक बदलाव नहीं आता। असली आजादी न्यूनेस ऑफ स्पिरिट में है, ना कि अपने एक्शंस की लंबी चेकलिस्ट बनाकर उन्हें रोज माइक्रो मैनेज करने में।
एकदम ठीक है आपने। इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि जीवन को सुधारने के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट नियमों की तलाश बंद करनी होगी। आजादी तब आती है जब लोग अपने फाइनाइट सेल्फ को उस नए अनंत उद्देश्य के साथ जोड़ लेते हैं।
और इसके साथ जाने से पहले मैं एक आखिरी सोचने वाली बात छोड़ना चाहती हूँ। अगर नियम या कानून का असल काम सिर्फ हमारी कमजोरियों को उजागर करना था तो क्या हमारी सबसे बड़ी गलतियां और मॉरल स्ट्रगल्स ही वो जगह हैं जहां से हमारा सबसे बड़ा आत्मिक बदलाव शुरू हो सकता है? क्या फेलियर सच में एक डेड एंड होने की बजाय किसी नए माइंडसेट में प्रवेश करने का सबसे सीधा रास्ता हो सकता है? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि सिर्फ नियम पता होने से हड्डी नहीं जुड़ती, उसके लिए उस नई ताकत को रिसीव करना पड़ता है।